ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणमस्कृत्यै नरं चैव नरोत्तमां देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवत के चतुर्थ चौथे स्कंद का 27वां अध्याय का 8वां श्लोक है। शीर्षक है राजा परंजन की नगरी पर चंडवेग का धावा। वैसे धावा कोई अच्छा शब्द नहीं है, चंडवेग का आक्रमण। स पंचाल पति पुत्रान पितृवंश विवर्धनान दारै संयोजयाम आस दुहितुः सदृशहि वरै। स पञ्चालपति पुत्रान् स पञ्चालपति पुत्रान् पितृवंश विवर्धनान् पितृवंश विवर्धनान् दारै संयोजयामास दारै संयोजयामास दुहितु सर्वैश्चै वरै दुहितु सदृशैर्वरै। स पञ्चालपति पुत्रान् पितृवंश विवर्धनान् दारै संयोजयामास दुहितु सदृशैर्वरै। स पञ्चालपति पुत्रान् पितृवंश विवर्धनान् दारै संयोजयामास दुहितु सदृशैर्वरै। स पञ्चालपति पुत्रान् वंश विवर्धन हारै संयोजयामास दुहितु सदृशैर्वरै। स पञ्चालपति पुत्रान् पितृवंश विवर्धनान् दारै संयोजयामास दुहितु सदृशैर्वरै। स पञ्चालपति पुत्रान् पितृवंश विवर्धनान् संयोजयामास सदृशैर्वरी। स पञ्चालपति पुत्रान् पितृवंश विवर्धनान् संयोजयामास माताजी। स पञ्चालपति पुत्रान् पितृवंश विवर्धनान् दारै संयोजयामास दुहितु सदृशैर्वरै। सपञ्चालपति पुत्रान् पितृवंश विवर्धनान् दारै संयोजयमास दुहितै सदृशैर्वरै सह वह पंचालपति पंचाल के राजा पुत्रान पुत्र पितृवंश पिता का वंश विवर्धनान बढ़ाते हुए दारही पत्नियों सहित संयोजयामास विवाह किया दुहित्री कन्याएं सदृशै योग्य वरै पतियों के साथ। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा श्री विग्रह जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। तत्पश्चात पंचाल देश के राजा पुरंजन ने अपने पैतृक कुल की वृद्धि के लिए अपने पुत्रों का विवाह योग्य वधुओं के साथ और अपनी कन्याओं का विवाह योग्य वरों के साथ कर दिया। कृपया दोहराइए, तत्पश्चात पंचाल देश के राजा पुरंजन ने अपने पैतृक कुल की वृद्धि के लिए अपने पुत्रों का विवाह योग्य वधुओं के साथ और अपनी कन्याओं का विवाह विवाह योग्य वरों के साथ कर दिया। तात्पर्य, वैदिक प्रथा के अनुसार हर व्यक्ति को विवाहित होना चाहिए। मनुष्य को इसलिए पत्नी ग्रहण करनी पड़ती हैं जिससे वो संतान उत्पन्न कर सकें और वे संतानें आगे चलकर भोजन तथा दाह क्रिया जो हम लोग अंतिम संस्कार श्मशान घाट में करते हैं जैसे कार्य संपन्न कर सके जिससे पूर्वज या पुरखे प्रसन्न रह सकें। भगवान विष्णु के नाम पर दिया गया अर्पण पिंडोदक कहलाता है और वो किसी भी वंश के वंशजों के लिए आवश्यक है कि वे अपने पितरों को पिंड प्रदान करें। पांचाल का राजा पुरंजन न केवल अपने विषय जीवन से संतुष्ट थे अपितु उन्होंने अपने 1100 पुत्रों तथा 110 पुत्रियों को विवाहित कर दिया। इस प्रकार निरंकुश परिवार को वंश के पद तक उठाया जा सकता है। इस श्लोक की महत्वपूर्ण बात यह है कि पुरंजन ने अपने पुत्रों तथा पुत्रियों को विवाहित कर दिया। माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने पुत्रों तथा पुत्रियों का विवाह की व्यवस्था करें। वैदिक समाज में ये अनिवार्य है। विवाह के पूर्व पुत्रों तथा पुत्रियों को स्वच्छंदता पूर्वक एक दूसरे से मिलने नहीं दिया जाना चाहिए। इस वैदिक सामाजिक संगठन की विशेष बात यही है कि इससे अवैध स्त्री या पुरुष प्रसंग या वर्ण संकरता रुकती है जो कि इस समय विविध नामों के रूप में प्रचलित है। दुर्भाग्यवश इस युग में माता पिता अपनी संतानों को विवाहित करने के लिए चिंता करते रहते हैं किंतु संतानें विवाह करने से मना कर देती हैं। इसलिए संसार में वर्ण संकरों की इतनी वृद्धि हो रही है। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जय अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यह राजा पुरंजन का वृत्तांत या इतिहास चार अध्यायों में 25, 26, 27 और 28 में वर्णन किया गया है। किसी गंभीर विषय को समझने के लिए हम कोई इतिहास के माध्यम से या कथा के माध्यम से हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि पूर्व के अध्यायों में राजा प्राचीन बरही ने नारद जी से प्रश्न किया। नारद जी वक्ता थे और प्राचीन बरहिषत श्रोता। क्या प्रश्न किया उन्होंने? यह प्रश्न नहीं किया कि कैसे मैं धन प्राप्त करूं या कैसे मेरे बिजनेस या उद्योग व्यापार आगे बढ़े, कैसे मैं रोग से मुक्त हूं। उन्होंने यह प्रश्न किया कि मुझे वो विशुद्ध ज्ञान दीजिए जिससे मैं भव रोग से, दैहिक रोग नहीं, जो भव रोग है, बंधन है, उससे मैं छुटकारा पा सकूं। यही बात हम लोग भगवद्गीता में देखते हैं। अर्जुन ने भगवान से ये प्रार्थना किया, शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्न, कि मैं अब आपका शिष्य हूँ, शाधी, शाधी मतलब अनुशासन करिए, शिष्य मतलब जो अनुशासन के अंदर रहे। गुरु और शिष्य एक बहुत गंभीर संबंध है। श्रील प्रभुपाद से जब मैं प्रथम बार मैंने दर्शन किए इलाहाबाद अर्धकुंभ मेला 1971 जनवरी में, प्रभुपाद से कुछ चर्चा किया, खैर बिना बात ही किए लगा मेरे ये गुरु हैं। वो हिंदी में चैतन्य चरितामृत पे संध्या काल में भाषण प्रवचन कर रहे थे। फिर कुछ समय, कुछ दिन पश्चात उनके दर्शन करने गए तो प्रभुपाद से जब मैंने दीक्षा के लिए कहा तो उनका, देखो तुम क्यों दीक्षा लेना चाहते हो, तुम्हारे मन में क्या है? तुम देख रहे हो विदेशी भक्त हैं, सफ़ेद हाथी कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, इसलिए तुम, कि तुम्हारे मन में कोई जिज्ञासा है कृष्ण के विषय में जानने के लिए, अपना स्वरूप पहचानने के लिए, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा। ये कोई भी जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको ये प्रश्न करने चाहिए। मैं चाहता हूँ सुख, मगर यहाँ पे भगवान गीता में कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम, संसार जो है दुखों का घर है, दुखों के घर में दुख रहेंगे। हम कितना अपना, हम कहना चाहिए समायोजन, एडजस्टमेंट कर लें, मगर दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, इनसे कोई नहीं बच सकता है। और तो और जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बुढ़ापा, जन्म लेने में भी बहुत कष्ट है। हम एक वायु अवरुद्ध एयर टाइट थैली में बंद रहते हैं, चारों तरफ से कीड़े मकोड़े उस सब गंदे पानी में तैरते रहते हैं, पर भगवान की माया इतनी प्रबल है, भजी बोलिया से संसार भीतर भूलिया रहिलत तुम्हें अविद्यार भरे। भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं गर्भ में हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे इस नरक से मुक्ति दिलाइए, मैं हमेशा आपका भजन करूँगा। और जहाँ हम इस संसार में आए, भगवान का विस्मरण। परीक्षित महाराज का नाम परीक्षित क्यों पड़ा? उनको भी कृष्ण की कृपा से गर्भ में ही दर्शन हुए। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो भगवान कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ को आवृत किया, वहाँ परीक्षित महाराज ने दर्शन किए। और जब वो बाहर आए तो हर व्यक्ति की परीक्षा करते थे, अरे ये कृष्ण तो नहीं है जिनको मैंने देखा था, ये कृष्ण तो नहीं है, इसलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा। तो जन्म मृत्यु, जरा, बुढ़ापा, कौन बुढ़ा होना चाहता है? कोई नहीं। कितने प्रकार के हम लोग शोध अनुसंधान कर रहे हैं। कल वैष्णव महाराज बता रहे थे कि आप चले जाएं मेकअप टेबल पे, 1108 तरह के हम लोग प्रभुपाद को भोग लगाते हैं, वहाँ 1108 तरह के आपको कृत्रिम बुढ़ापा रोकने के साधन मिल जाएंगे। ये फेस स्क्रीन और ये क्या क्या, मुझे तो खैर नाम भी नहीं मालूम, ओवर लोशन, फलाना लोशन, हरे कृष्ण लोशन को छोड़ के सब कुछ लोशन रहता है वहाँ। तो बुढ़ापा कोई नहीं चाहता, बुढ़ापा है। व्याधि, शरीर व्याधि मंदिरम, कोई कम कोई ज़्यादा। भक्त बनने के बाद श्री प्रभुपाद कहते थे संयम जीवन हम लोग व्यतीत कर रहे हैं, दुर्व्यसन हम लोगों ने छोड़े हैं, तो शरीर तो बीमार पड़ेगा ही मगर कम पड़ेगा। और ये भी कृष्ण शिक्षा देने के लिए कि तुम्हें शरीर नहीं हो। हम लोग ये देखें बड़े बड़े आचार्य लोग ने शरीर त्यागा, ये देखने के हमें शरीर नहीं है, जो कष्ट हो रहा है शरीर को हो रहा है, आत्मा को नहीं हो रहा है। और दूसरा ये हमें शिक्षा देने के लिए कि मेरा भक्त जो है बड़े से बड़े कष्ट में, चाहे वो शारीरिक हो मानसिक हो, किसी भी अवस्था में मेरा आश्रय नहीं छोड़ता है। चैतन्य चरितामृत में आता है कि धन्य है वो गुरु जो कभी अपने शिष्य का त्याग नहीं करता, और धन्य है वो शिष्य जो किसी भी अवस्था में गुरु को नहीं छोड़ता। शिखा, इसीलिए शिखा पकड़ के, हम लोग को कथा मालूम है दक्षिण भारत में चैतन्य महाप्रभु जब गए तो बौद्ध लोगों ने, जिनको भट्ट हारी या भट्ट थारी कहते हैं, उनके सेवक कृष्णदास को ले गए, तो भगवान गए, महाप्रभु पकड़ के खींच के ले आए, चलो तुम्हारा स्थान ये नहीं है। तो इसी तरह श्री प्रभुपाद, हमारे मन में कोई भी कृष्ण के प्रति जानने की इच्छा नहीं है, मगर अमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तवो पाछे पाछे। श्री प्रभुपाद के चरण कमलों का हम लोग दृढ़तापूर्वक उसको हम लोग ग्रहण कर लें, उनकी शरण में जाएं, कि हम लोग के पास कोई एकाकी उपाय नहीं, पायो बल हरि नाम संकीर्तन, हमारे अकेले कोई भी शक्ति नहीं है कि हम उसको कर सकें। पुरंजन शब्द का, जैसे कि पहले 25वें अध्याय में के 9वें श्लोक में तात्पर्य श्री प्रभुपाद ने समझाया है, जो देह का भोग करे उसको पुरंजन कहा जाता है। रंजन शब्द के हम लोगों ने कई अर्थ देखे हैं, यशोदा नंदन ब्रजजन रंजन, राधा रंजन, मनोरंजन। रंजन मतलब जो हमको आनंद प्रदान करे। यहीं पे मैं ये भी कहूँगा, जब मुझे ये आध्यात्मिक नाम प्राप्त हुआ श्रील प्रभुपाद को, मेरा पहले का नाम भी कर्मी नाम भी नहीं मालूम था, हम लोग तब तक मायावादियों का भी एक बहुत प्रिय नारा है, अलख निरंजन, जो आप जिसको जिसको ना देख सकें आप, जो बिना गुण के है वो है परम सत्य। तो जब मुझे ये नाम प्राप्त हुआ तो थोड़ा सा जिज्ञासा हुई श्रील प्रभुपाद से। मैंने पहला प्रश्न, प्रभुपाद बोले कोई प्रश्न हो तो पूछो, तो पहला मैंने प्रश्न यही किया कि आपने मुझे ये नाम दिया है, इस नाम का क्या अर्थ है? अभी तक हम लोग तो ये जानते आए कि मायावादी लोग इस शब्द का प्रयोग करते हैं, बिना गुण, जो निर्गुण हम लोग कहते हैं। तो प्रभुपाद बोले नहीं, वैष्णव दार्शनिक जो हैं वो इस निरंजन शब्द की व्याख्या करते हैं, भगवान जिनमें कोई भौतिक गुण नहीं है, नो मटीरियल क्वालिटी। जबकि वैष्णव मायावादी लोग वो कहते हैं विदाउट क्वालिटी, भगवान गुणों से रहित हैं। वैष्णव कहते कि नहीं, भगवान गुणों से युक्त हैं, पर उनके गुण जो हैं दिव्य हैं, चिन्मय हैं। विशेषकर जो भगवान की वृंदावन लीला है, ब्रज लीला है, वो इन त्रिगुणों से अतीत है, इनके दोष से वो दोषित नहीं है, इसलिए कृष्ण का एक नाम निरंजन है। प्रभुपाद ने कृष्णा बुक में भी समझाया है, जब यशोदा मैया ने भगवान के मुख में ब्रह्मांड देखा तो उसमें ये निरंजन शब्द का, तो चूंकि भगवान दिव्य हैं, अधोक्षज हैं, इंद्रियों से परे हैं, उनकी सब लीलाएं जो हैं वो दिव्य हैं, अप्राकृत लीला है, प्राकृत और अप्राकृत, अप्राकृतिक नहीं अप्राकृत लीला। भगवान जब आते हैं इस विश्व संसार में तो मनुष्य नहीं है, नर नहीं है, मगर नर वत वत शब्द आया है, मनुष्य के समान नाटक कर। जैसे हम लोग ने अभी जन्माष्टमी में नाटक देखा, अभिनय पात्र करते हैं, उस समय हम वही मान लेते हैं कि मैं राजा हूँ, मैं चोर हूँ, मैं ये हूँ। वास्तव में भगवान भी जैसे राजा, जब वो कारागार में जाता है निरीक्षण करने, तो वो वहाँ के नियमों से बद्ध नहीं होता। तो भगवान जब आते हैं अवतार, पांचवी मंजिल से नीचे आना, लिफ्ट से हम नीचे आते हैं, सीढ़ी से नीचे आते हैं, तो भगवान गोलोक वृंदावन धाम से नीचे आते हैं, अवतरण अवतार लेते हैं, तो उनसे वो प्रभावित नहीं होते और वो अभिनय करते हैं। नरवत लीला है, वो मनुष्य नहीं है, वो मनुष्य के समान नाटक कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं। इस श्लोक में भी कई शब्द आए हैं। पांचाल, हम लोग जानते हैं द्रौपदी का एक नाम पांचाली भी था। पांचाल पति ही, वास्तव में देखा जाए तो कृष्ण ही हमारे स्वामी हैं, कृष्ण ही हमारे पति हैं, यदुपति, लोकपति, श्रीपति लक्ष्मी जी के, द्वारकापति, पति तो वही हैं, स्वामी तो वही हैं। यही बात गोपियों ने कही जब वो रास के पास, भगवान के पास गई, कि ये दाढ़ी मूछ वाले पतियों से हमें कोई मतलब नहीं है, वास्तविक पति तो आप हैं हमारे। और ये सही भी है, पुरुष केवल कृष्ण हैं, भोक्ता केवल कृष्ण हैं, हम लोग प्रकृति हैं, भोग्य हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सन्यासी थे, इतने कट्टर सन्यासी थे कि उन्होंने कभी अपने जवान से जिह्वा से स्त्री शब्द का उच्चारण नहीं किया, हमेशा प्रकृति कहते थे वो। उन्होंने ये भी कहा, इसमें एक उदाहरण आता है कि प्रकृति की ये विशेषता है, खैर वो कथा दूसरी है, रामानंद राय के साथ जब वो देवदासियों लोग को अभिनय सिखा रहे थे, तो उनसे उन्होंने भक्त प्रद्युम्न मिश्र को भेजा कि जाके उनसे कथा सुनो, तो बोले वो तो देवदासियों को अभिनय सिखा रहे हैं, उनका स्पर्श कर रहे हैं, वो गृहस्थ हैं, उनके साथ मैं क्या कथा सुनूंगा। तो भगवान ने समझाया कि रामानंद राय जो हैं गृहस्थ होते हुए भी मुझसे श्रेष्ठ हैं, गोदावरी किनारे जो राजमहेंद्री जगह है वहाँ जहाँ वार्तालाप हुआ, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु श्रोता बने, सुने, उन्होंने प्रश्न किया, और रामानंद राय जो कि गृहस्थ थे, राज्यपाल गवर्नर थे, अपने को शूद्र मानते थे, उन्होंने सुनाया और कहा भी कि मैं तो एक तरह से काष्ठ लकड़ी की पुतली हूँ, जैसा आप नचा रहे हैं वैसे मैं नाच रहा हूँ। और वहीं पे वो प्यार आता है कि वह विप्र किवा शूद्र न्यासी केने नए, यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। तो प्रकृति का उदाहरण जो मैं दे रहा था कि भगवान ने कहा कि रामानंद राय तो की अवस्था पे तो कोई उनका नकल अनुकरण कर नहीं सकता है, मैं सन्यासी हूँ, मगर मैं यदि लकड़ी की प्रकृति को देखता हूँ, पुतली को देखता हूँ, तो मेरा मन जो है वो आकृष्ट हो जाता है। मगर वो इतने परमहंस अवस्था पे हैं कि देवदासियों को लीला अभिनय करते हुए स्पर्श करते हुए वो निर्विकार रहते हैं, हम लोग उनकी नकल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि छोटे हरिदास की कथा भी हमें मालूम है कैसे महाप्रभु ने त्याग दिया कि जिस आश्रम में हैं उसके अनुसार कार्य करे। श्री प्रभुपाद कहते थे एक ईमानदार रास्ते का मार्जन करने वाला वो हमसे श्रेष्ठ है, ऐसे पाखंडी से जो बहुत तिलक कंठी लगाए हैं, मगर यह कलयुग की विशेषता है, कलयुग जो है पाखंड, लोग वेश धारण करते हैं मगर कर्म उनके कुछ और रहते हैं। हम लोग खुद देख रहे हैं आए दिन नई नई घटनाएं, नए नए संतों का, तथाकथित संत आया राम गया राम निराशा राम आशा राम ये माँ वो माँ। रावण ने क्या किया था, अरे सन्यासी का वेश धारण किया था, और उसे कर्म क्या थे, वही कलयुग का प्रभाव हम लोगों में पड़ रहा है। तो पंचालपति भगवान कृष्ण ही सबके पति हैं, उन्हीं की हमें शरणागत शरण लेना है। शरणागति की 6 अवस्थाएं होती हैं, मैं विस्तार से उसमें नहीं जाऊंगा, मगर 2 जो आवश्यक है जो हम लोग कर सकते हैं, जिसमें कल चर्चा हुई, अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, अनुकूल भक्ति के अनुकूल वस्तुओं को ग्रहण करना। जैसे इस्कॉन में अनुकूल क्या है, 16 माला हरिनाम करना, हरे कृष्ण महामंत्र, ये पहला अनुकूल अंग है भक्ति का। और प्रतिकूल क्या है, प्रतिकूल वस्तुओं का वर्जन, त्यागना, मांसाहार नहीं, जुआ नहीं, पर स्त्री पर पुरुष संबंध नहीं। तो ये अवस्था है जो कल प्रश्न भी उन्होंने किया था एक सज्जन ने कि महत सेवा आए, महाप्रभु ने कहा, आप कहते हैं कर्म करो, महत सेवा कैसे प्राप्त होगी भाई, प्रभुपाद की सेवा हम करना चाहते हैं, प्रभुपाद को प्रसन्न करना चाहते हैं, कैसे, बस महत सेवा आप हमें कर दीजिए। भक्ति कोई निष्क्रिय नहीं है, अनुशीलन है। बड़े बड़े आचार्य हम लोग उपदेशामृत में क्या पढ़ते हैं, उत्साहान निश्चयात धैर्यात तत तत कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात सतोवृत्ते षड्विर भक्ति प्रसिद्ध्यति। ठीक है, कृपा होती है, एक नित्य सिद्ध होते हैं भगवान के पार्षद, एक कृपा सिद्ध होते हैं, कृपा से सिद्ध हो जाते हैं, और एक साधन सिद्ध, मगर सब पे कृपा हो जाए इसलिए हम बैठ नहीं सकते। जैसे विश्वविद्यालय में जाते हैं पढ़ने पढ़ाई करने के लिए, हम पाठ्यक्रम पूरा करते हैं, हमको उपाधि मिलती है, कुछ लोग बिना गए उनको मानद उपाधि ऑनररी डिग्री कही जाती है, तो हम ये सोच के बैठे कि हमको भी बिना पढ़े ऑनररी डिग्री उपाधि मिल जाएगी, तो ये बुद्धिमानी नहीं है। हमें साधन करना है, साधन भक्ति, राग भक्ति, रागानुगा भक्ति, नेक्टर ऑफ डिवोशन में, उपदेशामृत में ये सब व्याख्या की गई है। तो पुत्र शब्द जो है पुत्रान, पुत्र का अर्थ है नरक त्रायती स पुत्र है, जो हमें नरक से छुटकारा दिलाए वो पुत्र है। रघुनाथ मुकुंद की कथा हम लोग जानते हैं, जिनसे हमें भक्ति प्राप्त होती है हमारे पिता हैं, भले भौतिक दृष्टि से पुत्र हों। जब चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि वो तुम्हारे पुत्र हैं कि पिता, तो उन्होंने कहा हमसे पुत्र से हमें भक्ति प्राप्त हुई है, इसलिए वो मेरे पिता हैं, भले भौतिक दृष्टि से मैं उनका पिता हूँ। और भी कहावत आती है अपने देशभाषा में कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यदि आपका पुत्र नालायक है तो आप क्यों धन इकट्ठा करते, लोग परेशान रहते हैं, अरे हम शरीर छोड़ देंगे कैसे हमारे परिवार चलेगा। तो यदि आपका पुत्र कपूत है तो सब उड़ा देगा, और सुपुत्र है तो अपने आप वो इकट्ठा कर लेगा, उसके लिए कोई बहुत हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वंश विवर्धान शब्द है, सभी लोग चाहते हैं उनका वंश बढ़े, गुरु भी यही चाहते हैं और पिता भी यही चाहते हैं। शिष्य पुत्रवत होते हैं, बेटे के समान होते हैं। हम लोग जानते हैं कि वृद्धि हो परंतु हरि भक्तों की, हरे कृष्ण भक्तों की वृद्धि हो, कुत्ते बिल्लियों के समान नहीं, उनकी वृद्धि नहीं। हम लोग जानते हैं कुत्ते लोग एक बार में 10-12 बच्चे उत्पन्न होते हैं, कुछ ऐसे सर्प हैं, कुछ ऐसे कीटाणु हैं, लाखों हजारों अंडे देते हैं, तो ऐसे वंश से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि यदि हम वंश बढ़ाते हैं, पिता न स्यात, गुरु न स्यात, जननी न स्यात, ऐसे व्यक्ति को पिता नहीं बनना चाहिए, गुरु नहीं बनना चाहिए, राजा नहीं बनना चाहिए, जो अपने आश्रितों को, जो उन पर निर्भर हैं, उनको मृत्यु से ना बचा सके। ठीक है, मृत्यु तो होगी इस भौतिक शरीर की, आत्मा की नहीं, मगर ये ज्ञान के द्वारा अगला जन्म जाएंगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मे वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। पुनर्जन्म फिर नहीं। तो इस प्रकार से हमें वंश बढ़ाना है। वर्ष प्रभुपाद ने लंदन में ऐसे अक्सर मुझसे हिंदी में बात करते थे, लंदन में कुछ बात चल रही थी ऐसे गृहस्थ आश्रम के, समझो कि ये श्लोकें सब गृहस्थों से संबंधित हैं, तो प्रभुपाद ने कहा कि यदि तुम अपने बच्चों को भक्त नहीं बना सकते हो तो तुम्हें गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना ही नहीं चाहिए शास्त्रों के अनुसार। मैंने प्रश्न किया कि पहले से तो नहीं मालूम कि संतान भक्त बनेगी कि नहीं बनेगी। बोले नहीं, यदि तुम शुरू से गर्भाधान संस्कार से तुम यदि तुम वैज्ञानिक प्रक्रिया है, आम का बीज बोगे तो आम ही होगा, बबूल नहीं होगा। तो शुरू से यदि हम भक्ति की प्रक्रिया, जैसे प्रहलाद महाराज का उदाहरण है, कल उन्होंने पुरानी बताया, कयाधु को नारद जी वो मारने ले गए थे इंद्र, तो कयाधु को नारद जी ने पकड़ लिया, अपने आश्रम ले गए। बोले नहीं, इसको गर्भ में बहुत बड़े भक्त हैं, और उन्होंने श्रीमद् भागवत पूरी कथा उनको सुनाई, प्रहलाद महाराज ने गर्भ में वो कथा सुनी, इसलिए वो भक्त भगवान के बने। तो ये एक प्रक्रिया है, न केवल जन्म, नहीं तो कुत्ते बिल्ली के समान जन्म से कोई हमें अभिप्राय नहीं है, जन्म के बाद भी एक ट्रेनिंग, प्रशिक्षण देना। आजकल के माता पिता जानबूझ के अपने संतानों का गला घोट रहे हैं, कृष्ण भगवान के बारे में कोई उनको बता ही नहीं रहे हैं, और हरि भक्तों का वंश बढ़े, संग बढ़े, संगात संजायते काम है, जैसा हम संग करेंगे वैसे कामना उत्पन्न होगी। शराबी चाहता शराबियों को संग मिले, भक्त चाहते हैं भक्तों का संग मिले तो हमें प्राप्त होगा। और जैसे कि दारा शब्द आया है, ये भी महत्व का है, फिर बोलचाल की भाषा हम लोग कहते हैं कि साधु संगत हरि भजन, यही दुर्लभ दोए। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। साधु संग करना, हरि भजन करना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, ये बहुत ही दुर्लभ है। नहीं तो बेटे लक्ष्मी और औरतें धन तो पापियों के भी होता है। यही मात चैतन्य चरितामृत कहती है, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, और लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। एक लव, एक सेकंड, ये जो पलक हम झपकते हैं, युगायतम निमिष निमि निमि निमिष, वो काल जो है उतना हम संग कर लें। प्रभुपाद पारसमणि थे, भक्तों ठाकुर ने भी समझाया है कि वैष्णव पारसमणि होते हैं, जिसको छू दें वो वैष्णव बन जाता है, जिसको देख लें। कई भक्तों ने प्रभुपाद के दर्शन नहीं किए, केवल दृष्टि बात नहीं की, मगर सब वो भक्त बने। तो इस प्रकार से ये साधु संघ का प्रभाव है, वहीं उल्टा प्रभाव भी है। कुसंग हम करेंगे तो लव मात्र का कुसंग भी हमको पतन के गड्ढे में डाल देगा। अजामिल का उदाहरण है, अपने युवा काल में बढ़िया ब्राह्मण थे, सब काम करते थे, एक सेकंड के लिए उन्होंने देखा, वो दृश्य देखा उन्होंने काफी। इसीलिए गुरु मतलब मखमल की गद्दी में बैठना, वो व्यास आसन पर बैठना कोई मजाक नहीं है। व्यास आसन पर बैठ के भी लोगों का पतन हुआ है। रोमर्षण का बलराम जी ने बोले तुम क्या अपने को भूल गए हो। तो इसलिए ये दो धारी तलवार है, कांटों का गद्दी है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है शिष्य को ग्रहण करना। केवल व्यास पूजा में प्रसाद पाना, माला लेना, ये मैं किसी को मतलब आलोचना नहीं है, कैसे किसी को भी नहीं, मैं बता रहा हूँ एक उदाहरण, ये तथ्य है। गुरु नहीं तो गुरु यदि वो नहीं है तो गोरु हैं, गोरु मतलब जानवर। एक बार मायापुर में एक बार गुरुकृपा महाराज गुरुवाष्टक गा रहे थे, वंदे गोरु श्री चर प्रभुपाद भी थे, बोले गोरु मत बोलो गुरु बोलो, गोरु और गुरु में अंतर है। क्या वो संस्कृत उस समय भक्तों को नहीं आती थी। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने वहाँ कहा लंदन ने मुझसे कि ऐसा है, तुम कहते हो तुम्हें यदि तुम्हें संदेह है कि तुम संतान को भक्त नहीं बना पाओगे तो तुमको गृहस्थ आश्रम प्रवेश ही नहीं करना चाहिए। भक्ति शांत अभी ठाकुर का हम लोग सामने उदाहरण है, परमहंस वैष्णव आचार्य वो बोले भी कि हम नैष्ठिक ब्रह्मचारी, शरीर छोड़ा तो उनको पूरा याद था, उनकी जो कहते हैं फोटोग्राफिक मेमोरी, जब हम फोटो खींचते हैं तो अंतिम समय तक भी वो जो ग्रंथ पढ़े थे छोटपन में उसकी लाइन 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 पूरा दोहरा सकते थे। नैष्ठिक ब्रह्मचारी की एक विशेषता ये होती है कि उनकी स्मरण शक्ति बहुत प्रबल होती है। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभु लाइन लाइन शब्द के अनुसार पूरा बता देते थे कि ये है। तो इस प्रकार से हमें जो है माता पिता का जो प्रभुपाद समय तात्पर्य में समझा रहे कि माता पिता कर्तव्य है कि अपने पुत्रों का विवाह करें, और यहाँ प्रभुपाद ने जो तात्पर्य में समझाया है ये एक लौकिक कर्तव्य है। भगवान विष्णु चैतन्य महाप्रभु गया गए और उदाहरण देने के लिए गया जाना उनका बहाना था कि हम जगन्नाथ मिश्र का जो है हम पिंड तर्पण करेंगे, मगर मुख्य उद्देश्य क्या था, ईश्वरपुरी के दर्शन और उनसे दीक्षा प्राप्त करना। तो लौकिक भक्त जो है वो लौकिक और पारलौकिक भक्ति में एक तरह से संतुलन स्थापित करते। षड गोस्वामी सब कुछ अपना भजन ने पूरा करते थे मगर फिर भी ब्रजवासियों के जो समस्याएं हैं उनका भी निपटारा करते थे। तो प्रभुपाद ने समझाया लौकिक भगवान विष्णु को हमें अर्पण करना चाहिए, जहाँ विष्णु हैं पिंड भी अर्पण करना चाहिए, मगर हम वैष्णव बन गए तब हमें ये सब किसी की अवस्था नहीं। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय और कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत, ये श्रद्धा है तलमल नहीं अटूट कि कृष्ण भक्ति करने से सब कार्य हो जाते हैं। तो अंत में जो आधुनिक पॉलिसी है शासन की वर्णशंकर कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग जो समर्थन करते हैं कि वैसे तो अनुलोम विलोम होता हम व्याख्या में नहीं जाएंगे ब्राह्मण पति और क्षत्रिय पत्नी, परंतु आजकल का जो है कलयुग का पंजाबी पति बंगाली पत्नी, अरे ये तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, जो बेटा होगा उसमें दोनों के गुण होंगे, इससे बढ़ के मूर्खता और कुछ हो नहीं हो सकती। दूसरा हमारा जो प्रचलन है लिव इन रिलेशनशिप, लिव इन नहीं डाई इन है, मरने वाली रिलेशनशिप है। कुत्ते बिल्ली भी तो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, उनके लिए ना माँ है ना बहन है ना कुछ है। तो लिव इन मनुष्य लिव इन रिलेशनशिप आई और ऐसे व्यक्तियों को शासन पुरस्कार दे रहा है। एक भूपेन हजारिका अब तो शायद नहीं रहे, आसाम के थे, उनको पद्म भूषण जिंदगी भर उन्होंने कुत्ते बिल्ली के समान लिव इन रिलेशनशिप में जिंदगी काट दी। तो ये सब कलयुग का प्रभाव है, शास्त्रों को ज्ञान नहीं है और हम अपने पुत्र उत्पन्न कर रहे हैं और उनको हम धकेल रहे हैं। पैदा होते ही कोई कृष्ण का नाम नहीं, रामचरितमानस नहीं, रामायण नहीं, गीता नहीं, भागवत नहीं, कुत्ते के समान पैदा हो कुत्ते के समान मर जाओ। तो क्योंकि समय हो रहा है प्रसाद का तो पुनः अगर कोई प्रश्न हो या शंका पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं भौतिक दृष्टि से मेरा जो व्यवसाय है वो प्रोफेसर का है, यूनिवर्सिटी में हूँ, तो मैं प्रयास ये करता हूँ कि समय से अपना प्रवचन या लेक्चर क्लास का पूरा करूँ और 5 मिनट पहले छोड़ दूँ, इसे आगे आने वाले टीचर को वेट न करना पड़े। तो इसलिए समय हो रहा है, फिर भी एक दो प्रश्न शंका या कोई कमेंट्स हो आप लोग। यस प्रभु, लाउडर। हाँ ऐसा है, आपका प्रश्न सही है, परंतु ये जो वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्य हैं या कर्म कांड हैं ये हमें छोड़ने नहीं पड़ते, छूट जाते हैं और जब तक हम उस अवस्था तक नहीं पहुंचते हैं हमें अपना लौकिक कर्म भी करना चाहिए। परंतु भगवान की भक्ति जैसे 100 सुनार की 1 लोहार की, कृष्ण भक्ति इतनी प्रबल है कि उनका आश्रय लेने से वो टुक 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 सुनार करता है छोटी हथौड़ी से और बड़े घन से लोहार तोड़ता है। तो भगवान की भक्ति, भगवान कहते भी हैं नायम ऋणी, जो शब्द है ऋण है, पितृ ऋण, देवर्षि ऋण, यदि आप जो भी जन्म लेता है उस पर ऋण रहता है, परंतु जो भगवान मुकुंद के शरण में चला जाता है परिहृत कर्तम शरणम शरण्यम, उसके बाद कोई नहीं रहता। तो हमें उस अवस्था तक पहुँचना है, परंतु एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, हम हरि नाम का आश्रय लेकर के तो धीरे धीरे अपने आप, क्योंकि सार तो भगवान की भक्ति है मगर जब हम नहीं पहुंच सकते तो हमें अपना लौकिक या सामाजिक कर्तव्य भी करना है, साथ साथ भक्ति भी करनी है। मैंने बताया षड गोस्वामी इन लोग संतुलन, दोनों के बीच में एक संतुलन या बैलेंस स्थापित करना है। होगा नहीं ठीक है, नहीं नहीं नहीं, देहात में बुद्धि जो है वो धीरे धीरे वो छूटेगी। भगवान के नाम का आश्रय लेने से, और जब तक हम समझते कि हम ये देह हैं तब तक हमें निश्चय वो कर्म करना चाहिए, मगर वो अल्टीमेट नहीं है। और एक अवस्था आती है गुरु के निर्देश में कि हमें उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। कृष्ण भक्ति में इतना, जैसे आदो श्रद्धा तो साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति सीढ़ियाँ हैं, चढ़ते जाइए फिर निष्ठा स्ट्रांग, रुचि प्रेम भाव महाभाव राधा रानी का, तो वो आता है। आचार्यों के आश्वासन के पे हम लोग आगे चल सकते हैं। और प्रभुपाद ने कहा भी था कि बहुत प्रश्न मत करो, हरि नाम करो और तुम्हारी सब श्रद्धा सब तुमको अपने आप समझ में आए। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नए, श्रवणादि शुद्ध चित्त करे। पया प्रभुपाद मुझे लंदन में समझाया कि उदय होगा कब छोड़ना है, अपने आप सूर्य अपने आप उदय होता है, तो जब हम श्रवण कीर्तन के द्वारा नित्य सिद्ध है कृष्ण का प्रेम, वो अपने आप उदय होगा। जैसे जैसे काम वासना छोटे बच्चे में भी है परंतु अभी सोई पड़ी है, जब वो युवा होता है अपने आप उदय होती जागृत हो जाती, तो उसके लिए घबराना नहीं चाहिए। गुरु और कृष्ण के प्रॉमिस के आधार पे हमें आगे पढ़ना चाहिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।